शांति। आज बहुत सुंदर सेशन के लिए हम सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं और हमारे बीच में हमारी बहुत अच्छी वक्ता, जिनको हम कहें मोटिवेशनल स्पीकर, हमारी ख्याति बहन हमारे मंच पर विराजमान है। हम बहुत ही सम्मान के साथ उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं दीदी का। हमारी सभा में विराजमान है, पहुंच चुके हैं, हमारे बीच में है घनश्याम भाई पंड्या जी। अगर पहुंच चुके हैं तो उनसे भी निवेदन है भाई सबसे कि आप भी मंच पर आकर के अपना सम्मानीय स्थान ग्रहण करेंगे। और हम सभी, भले हम अभी थोड़ी कम संख्या में हैं, लेकिन हम बहुत जोरदार ताली बजा करके भाई सब का भी इस सभा में बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करेंगे। और मैं इस कार्यक्रम को शुरू करने के पहले चाहूंगी हम सभी उस परमात्मा की दिव्य स्मृति में एक मिनट के लिए बैठेंगे, फिर कार्यक्रम को स्टार्ट करेंगे।
शांत मन के सागर में जब विचारों की लहर थम जाती है, निर्णय की हर राह तब स्पष्ट नजर आ जाती है। कर्तव्य पूरा समर्पण हो, पर मन में आसक्ति न हो, यही कला है जीवन की, जहां चिंता की शक्ति न हो। मुखड़ा न्यारे कर कर शांति का दीप योग और विवेक की शक्ति से श्रेष्ठ निर्णय हम सब करें। मुखड़ा न्यारे
मंच पर हमारे आज के वक्ता पहुंच चुके हैं, जो आज के बहुत सुंदर विषय को क्लैरिटी इन कम्युनिकेशन, इसको स्पष्ट करेंगे। उसके पहले मैं चाहूंगी हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनों से निवेदन है कि मंच पर शोभायमान हमारे अतिथियों का तिलक और गुलदस्ते के द्वारा स्वागत करेंगी और हम सभी भी ताली बजा करके आपका स्वागत करेंगे। कहते हैं जीवन की वास्तविकता किस चीज में है? जीवन का वास्तविक आनंद है जब हम अनेक आत्माओं को अपने से संतुष्ट करते हैं, अनेक आत्माओं को अपने से भरपूर करते हैं। और हमारे सब संबंधों में कई सारे संबंध होते हैं, चाहे वो पारिवारिक संबंध हो या हमारे मित्रों के साथ संबंध हो या फिर हमारे ऑफिस में हमारे सबऑर्डिनेट्स के साथ संबंध हो। अगर वो संबंध हमारे मधुर हैं तो समझिए हमारे साथ विजय है। और वो संबंध मधुर कब होंगे? जब हमारा संवाद बहुत अच्छा होगा, हमारा उनके साथ कोऑर्डिनेट बहुत अच्छा होगा। कहते हैं संवाद स्पष्ट हो और प्रभावी हो, पारदर्शी हो, तो आप असंभव से असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं। कोई कार्य बिगड़ गया है तो हम उस कार्य को भी बना सकते हैं। इसलिए आवश्यकता है कि हम हर एक संबंध को बहुत अच्छे से बनाएं। आज हम देखते हैं इस दौर में अगर कोई अपनी बात अच्छे से आगे आगे करके रखता है, साफ क्लियर रखता है, तो हर जगह वो आगे रहता है, चाहे परिवार में देखें, ऑफिस में देखें या मंच पर देखें। तो आज बहुत सुंदर ये टॉपिक लिया गया है कि हम कैसे कम शब्दों में अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को और अपने दिल के उद्गार को अच्छे से सामने रख सकें। और इसके लिए कहते हैं ना, कई प्रकार के कम्युनिकेशन होते हैं। एक होता है कि हम शब्दों द्वारा दूसरों से बोलें, एक होता है हम खाली इशारा करें और सामने वाले उसको समझ जाएं, और एक होता है हम मौन हो जाएं तो भी सामने वाला हमारी भाषा को समझ जाए। तो ऐसा बेस्ट कम्युनिकेशन कैसे होगा, उसका क्या तरीका है, तो आज हमारे बीच में बहन ख्याति जी, आप पिछले 35 वर्षों से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई हैं और हमारा एक दिल्ली ओआरसी में बहुत बड़ा कैंपस है, जैसा यहाँ कैंपस है ऐसे ही वहाँ पर कैंपस है। दीदी वहाँ पर करीबन 20 वर्षों से समर्पित रूप में हमारी आदरणीय आशा दीदी, जिन्होंने आप सभी को कल संस्था के परिचय से रूबरू कराया, आप उनके सानिध्य में रह करके ही सेवाएं कर रही हैं, तो एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। बड़ों के साथ रहना ही बड़ा बनना है मैं सोचती हूँ, तो आप दीदी के अंग संग रह करके ही सेवाएं देती हैं। और आप एज अ फैकल्टी मेंबर, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, आप कॉरपोरेट सेक्टर में ट्रेनिंग लगातार कराती रहती हैं। आप कई सारी एक्टिविटीज में सक्रिय रूप से पार्टिसिपेट करती हैं, जैसे ट्रेनिंग्स हैं, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग है, स्पिरिचुअल हीलिंग है, मार्गदर्शक के रूप में भी आप सेवाएं देती हैं, पब्लिक में स्पीकिंग के रूप में भी आप सेवाएं देती हैं, और आपने करीबन 2000 से भी अधिक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, टॉक शो, वर्कशॉप ऐसे कंडक्ट किए हुए कई सारे कॉर्पोरेट सेक्टर्स में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में और सोशल ऑर्गेनाइजेशन में। और साथ में हमारी जो ये एडमिन विंग है, ऐसे हमारी 20 विंग बनी हुई है, उसमें से एक विंग है सिपिंग एविएशन एंड टूरिज्म विंग। आप उसकी दिल्ली जोन की कोऑर्डिनेटर हैं और साथ में माउंट आबू में अनेक कार्यक्रम विंग्स के होते रहते हैं। हम एक विंग में आए हैं, ऐसे अलग अलग विंग डॉक्टर्स का है, मीडिया का है, मेडिकल है, वुमेन है, ऐसे कई सारे विंग्स हैं। आपको स्पेशली उसमें इनवाइट किया जाता है स्पीच देने के लिए, तो ऐसी विशेष। और पर्सनली मैं तो एक बात कहना चाहूंगी कि दीदी जब भी कभी स्पीच देती हैं और मैं अगर हूं तो मैं सारे काम छोड़ करके दीदी को जरूर सुनती हूँ। बहुत अच्छा, जैसे आज का टॉपिक है ना कम्युनिकेशन, बेस्ट कम्युनिकेशन का उदाहरण अगर देखा जाए ना तो दीदी साक्षात उसकी मूर्त है। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं जब ये प्रोग्राम पूरा होगा तो आप सचमुच में कहेंगे कि दीदी की स्पीच बहुत अच्छी थी। तो अभी हम ज्यादा समय न लेकर के दीदी को मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे, आदरणीय ख्याति दीदी से।
ओम शांति, ओम शांति। थोड़ी महिमा ज्यादा हो गई है तो थोड़ा बोझिल फील कर रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है ना कि ज्यादा ही महिमा हो जाए तो थोड़ा सा फील होता है कि पता नहीं हम अब उस खोटी पर उतर पाएंगे या नहीं उतर पाएंगे। परंतु उससे ज्यादा महत्व ये है कि आज हम जिस विषय पर बात करने आए हैं उसको हम क्लियरली एक दूसरे से बात कर सकें। और इसीलिए आज का जो टॉपिक है वो है ही क्लैरिटी इन कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले अगर बात करें कम्युनिकेशन की, तो हम सभी कैसे जगत में जी रहे हैं जहां पर हम सभी एक दूसरे से बात कर रहे हैं, है ना, कम्युनिकेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। और ऐसे स्थान पर रहते हुए क्या हम कम्युनिकेशन से बच सकते हैं? क्योंकि आधी से ज्यादा प्रॉब्लम का कारण भी कम्युनिकेशन ही है। समझते हैं ऐसा? थोड़ा हाथ खड़ा करके बताएं। ये भाषण सेशन नहीं होगा, कम्युनिकेट करेंगे, है ना? कम्युनिकेट करेंगे। तो कौन कौन समझते हैं कि आधी से ज्यादा प्रॉब्लम का कारण ही कम्युनिकेशन है? अच्छा, तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आपकी तरफ से है, किसी और की तरफ से है? बोथ साइड्स। चलिए, ये तो स्वीकार किया कि मैं भी हूं कारण। नॉर्मली हम क्या कहते हैं? सामने वाला ही कारण है ना। हम तो कभी कारण होते नहीं है किसी भी बात का। लेकिन कम्युनिकेशन में ये बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि जितना इम्पॉर्टेंट सामने वाले का बोलना होता है, उतना ही इम्पॉर्टेंट सुनने वाले का भी होता है कि हम जो बोल रहे हैं सामने वाला उसको ले कैसे रहा है। अगर मेरे शब्दों में हेर फेर है तो सामने वाला भी उसको गलत उठाता है। फिर हम क्लियर करते रहते हैं और क्या कहते हैं? मेरा मतलब ये नहीं था, मेरे शब्दों का अर्थ ये नहीं था, मैं ये नहीं कहना चाहती थी, मेरा भाव ये नहीं था, है ना? ये सब शब्द कब निकलते हैं? जब कुछ गड़बड़ हो चुका होता है ना? अब गड़बड़ कैसे हुआ? या तो मुख से हो गया है, या तो कोई ऐसे अनुचित शब्दों का प्रयोग कर लिया गया है जिसके लिए अब मुझे क्लैरिटी देनी पड़ रही है कि मेरा भाव ये नहीं था, मेरा मतलब ये नहीं था। शब्दों पे मत जाइए, मेरी भावनाओं पे जाइए। शब्द तो गलत निकल रहे हैं, भावना पता नहीं क्या होगी। और क्या कहा जाता है? जो अंदर होता है वही बाहर निकलता है। तो अगर शब्द थोड़े बहुत टेढ़े निकले हैं तो अंदर कितना टेढ़ा होगा वो तो भगवान जाने अभी। और फिर क्या कह रहे हैं? आप शब्दों पे मत जाओ, अंदर तो हम जाने ही नहीं चाहते हैं क्योंकि अंदर तो पता नहीं क्या भरा हुआ है। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि जितना हम क्लैरिटी बाहर से लाना चाहते हैं उतना अंदर भी होनी चाहिए। दोनों साइड की अगर क्लैरिटी होगी तो कम्युनिकेशन हमेशा ही अच्छा रहेगा। इसीलिए कम्युनिकेशन शब्द जो है वो अपने आप में कहता है टू कम्यून, अर्थात इंटरैक्ट करना, सामने वाले तक एक मैसेज पहुंचाना। अगर आपको याद हो, मेरे से काफी ज्यादा उम्र के भी यहां पर बैठे हुए हैं, एक समय था जब दुनिया में कम्युनिकेशन का साधन, अर्थात एक दूसरे तक मैसेजेस पहुंचाने का साधन जो था वो क्या था? क्या था? लेटर। लेटर से पहले क्या था? पोस्ट कार्ड। अच्छा, पोस्ट कार्ड से पहले क्या था? हाँ, कबूतर था। करेक्ट, कबूतर था। किसी ने तो बोला कबूतर था, तो कबूतर के मुख में, चोंच में इतना छोटा सा एक चार शब्द लिख करके एक मैसेज भेज दिया करते थे, है ना? पहले कबूतर हुआ करता था, कबूतर के बाद टेलीग्राम, लेटर, ये सब एक साथ लगभग आया, है ना? उसके पश्चात क्या आया? टेलीफोन। कौन से वाले फोन? वो बड़े बड़े वाले फोन, है ना? वो बड़े बड़े फोन आए, लैंडलाइन फोन, बड़े बड़े फोन। उसमें भी गोल गोल घुमाते थे, आवाज आती थी, बड़ा मजा आता था, है ना? वो फोन आए। फिर उसके पश्चात पेजर्स आए, राइट? पेजर्स आए। पेजर के बाद मोबाइल, और मोबाइल भी कितने बड़े होते थे? ये जितना माइक्रोफोन है ना, इतने बड़े बड़े मोबाइल होते थे, याद है? उस समय कॉल रेट भी कितना होता था, है ना? लगभग मुझे जो याद है 18 रुपए ऑन इनकमिंग, 18 या 20 रुपए आउटगोइंग कॉल, समथिंग समथिंग ऐसा था रेट। फिर उसके बाद मॉडर्न फोन आने शुरू हुए, एंड्रॉइड आ गए, आईफोन आ गए, सब कुछ आ गया। जब पहले कम्युनिकेशन करते थे तो संबंध अच्छे थे या खराब थे? अच्छे थे। दूरियां थी लेकिन संबंध अच्छे थे। आज एक कॉल की दूरी पर है इंसान, लेकिन संबंध कैसे हो गए? अब पहले अगर किसी का फोन आता था या लेटर आता था तो इंतजार होता था, उसका खत आने वाला है। उस खत को पढ़ते थे, तकिए के नीचे भी रखते थे, चार चार पांच पांच बार भी पढ़ते थे, और फिर वो लेटर लिख करके सामने वाले को भेजते थे। और एक बार भी नहीं लिखते थे, दो तीन दिन लगाते थे लिखने में भी, क्योंकि दिल की भावनाओं को व्यक्त किया जा रहा था। दो तीन दिन लगाते थे लिखने में, फिर उसको पोस्ट करते थे। सामने वाले को भी जब मिलता था वो भी उसको उतने ही प्यार से पढ़ता था, है ना, खतों का एक्सचेंज होता था। वो लेटर तो लेटर, पोस्टमैन से प्यार हो जाता था। लेटर तो छोड़िए, पोस्टमैन से प्यार था। क्यों? क्योंकि वो हमारे किसी समीप व्यक्ति का संदेश हम तक लेकर के आया है। दिवाली पे जब सबको गिफ्ट बांटते थे तो उस पोस्टमैन को जरूर देते थे। क्यों? इतना दिल का संबंध हो जाता था उस पोस्टमैन के साथ भी हमारा, होता था या नहीं? उस समय पे इंतजार करते थे कि हमारा व्यक्ति हमसे कम्युनिकेट करे। आज उसी व्यक्ति का जब फोन आता है तो क्या कहते हैं, जब देखो फोन करता रहता है। कितना डिफरेंस आ गया। आज उसका फोन आए तो हम साइलेंट करके छोड़ देते हैं, जब देखो बजता रहता है। कम्युनिकेशन के साधन जितने बड़े, दूरियां भी उतनी ही ज्यादा बढ़ गई। तो कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हुई है जिस कारण से वो दूरियां बढ़ी हैं। साधन तो आए थे समीप लाने के लिए, वो समीप और चाहते भी थे कि कुछ ऐसा मिले जो सहज हो जाए, है ना, रिश्तेदारों से आराम से बात कर सकें, लोगों से आराम से बात कर सकें। वो भी समय याद होगा आपको, कई बारी घर में लैंडलाइन फोन भी नहीं होता था, किसी एक के घर में लैंडलाइन होता था और उसका नंबर अड़ोसी पड़ोसी के पास होता था, है ना, और वहां से आवाज आती थी, चाची आपका कॉल आया है, और वो चाची नीचे आती थी फोन अटेंड करने और चाय पी के जाती थी, याद है? और वो चाची अब अपने आप बन जाती थी चाची, बुआ चाची, रिश्तेदारियां बनी हुई हैं अड़ोसी पड़ोसियों में। एक संबंध क्रिएट करने का तरीका था, समीपता थी। लेकिन अब जैसे जैसे कम्युनिकेशन के साधन बढ़े, दूरियां बढ़ गई हैं। तो क्या कारण है और क्या हम करें जो इन दूरियों को मिटा सके, आज इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो आप सभी तैयार हैं? ओके। करना चाहेंगे? करना चाहेंगे, इन दूरियों को मिटाना चाहेंगे, अपने दिल को क्लियर करना चाहेंगे और चेक करेंगे कि हमसे कहां गलती हो रही है। तो सबसे पहले अगर देखें तो कम्युनिकेशन क्या है, तो कम्युनिकेशन को बताया कि तीन चीजों में हम कम्युनिकेट करते हैं, थ्रू थ्री मीन्स। फर्स्ट इज, स्टेज के लाइट ऑफ कर दीजिए प्लीज। थ्रू थ्री मीन्स बताया है। सबसे पहले हम कम्युनिकेट करते हैं थ्रू इन्फॉर्मेशन। कौन सी इन्फॉर्मेशन? कौन सी इन्फॉर्मेशन? जो भी हमारे पास इधर उधर से इन्फॉर्मेशन आती है, हम उसको सामने वाले तक पहुंचाते हैं। अब अपने दिल पे हाथ रख के पूछें, हम सबसे ज्यादा कौन सी इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव? कहीं पर कुछ अच्छा चल रहा हो तो शायद नहीं बताएंगे कि वहां पर बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन कहीं कुछ गलत हो गया हो। मुझे याद आता है एक बार ओम शांति रिट्रीट सेंटर में जब प्रतिभा पाटिल जी थी, तो उस समय पर प्रेसिडेंट का, प्रतिभा पाटिल जी का आने का प्लान बना हमारे पास। तो मैं उस समय पे थोड़ा सा, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी हम लोग सेवा करते हैं, तो मैंने किसी चैनल वाले को फोन किया। मैंने कहा कि प्रतिभा पाटिल जी आ रही हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आ रही हैं हमारे पास, तो आप उसकी कवरेज कीजिए। तो वो कहते हैं कि इसकी क्या कवरेज करनी है। मैंने कहा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आ रही हैं, उसकी कवरेज तो बनती है। कहते हैं नहीं, उसकी कवरेज में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। कहते हैं प्रतिभा पाटिल जी ओम शांति रिट्रीट सेंटर में आई और वहां पर बम फटा, ये है न्यूज। प्रतिभा पाटिल जी आई, अच्छा भाषण करके चली गई, ये क्या न्यूज है? कह रही वो तो बहुत सारी जगह जाती हैं। ये स्थिति हो चुकी है कि हम परोसना भी क्या चाहते हैं लोगों को, किसी के यहां क्या हो गया वो हम सबसे जल्दी फैलाते हैं। तो हमारे पास एक्चुअली दुनिया की इन्फॉर्मेशन भी देखिए तो कैसी आ रही है, और जो हम ले रहे हैं, जो हम रिसीव कर रहे हैं, तो लोगों तक भी हम क्या पहुंचा रहे हैं, वही पहुंचा रहे हैं। इसीलिए इस तरीके के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं ताकि हमारा इनटेक जो है वो सुधरे, हम सिर्फ नेगेटिव नहीं, हम उस अच्छाई को भी देख सकें जो इस समाज में प्रिवेल कर रही है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम क्या इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा रहे हैं। दूसरा है जो हमारे विचारों में है, उन विचारों को भी हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं थ्रू कम्युनिकेशन। और तीसरा है हमारी फीलिंग्स, हमारी भावनाएं, जो किसी को दिखती नहीं है, लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं एक अपने अच्छे वक्तव्य से, एक अपने अच्छे कर्मों से, अपनी फीलिंग से हम लोगों तक पहुंचाते हैं उसको। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये तीनों चीजों के माध्यम से हम लोगों तक कम्युनिकेट करते हैं। फिर अगर देखा जाए तो क्या क्या साधन है कम्युनिकेशन के, जैसे बहन शुरुआत में बता भी रहे थे, तो सबसे पहला जो कम्युनिकेशन का साधन है वो है हमारे अपने विचार। विचारों के द्वारा हम कम्युनिकेट करते हैं, मैं क्या सोचता हूं। पूरा टाइम हम क्या कहते हैं, मैं ये समझता हूं, मेरा ये मानना है, मैं ऐसा सोचता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने ऐसा देखा था। पूरा टाइम हम क्या रखना चाह रहे हैं, मैं क्या सोच रहा हूं, मेरे विचार। उन विचारों के द्वारा हम लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। सही है गलत उस बात पे अभी नहीं जाएंगे, लेकिन विचारों के माध्यम से हम लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। दूसरा जिसके थ्रू कर रहे हैं वो है शब्द। अगर शब्द नहीं होंगे तो कम्युनिकेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, होता है या नहीं। अब वो शब्द तो हैं, लेकिन उसको कैसे शब्दों को सही रूप से परोसा जाए वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। फिर तो वो शब्दों का परोसना भी उतना महत्वपूर्ण। तीसरा है एक्शंस, हम किस तरह के एक्शंस कर रहे हैं, उस एक्शन के थ्रू भी कम्युनिकेशन हो जाता है। क्या किया, क्या किया, यहां वाले समझे क्या किया, क्या किया मैंने। मैंने कुछ नहीं किया, मैं बैठी हुई थी। भाई साहब थोड़ा ठीक से बैठिए ना, क्या हुआ। कई बारी हमने शब्द बोले कि ठीक से बैठिए, आप ठीक ही बैठे हैं सारे, लेकिन कई बारी हम शब्द बोल करके सामने वाले को कम्युनिकेट कर देते हैं। कई बारी एक्शन के द्वारा, मैंने कुछ बोला नहीं लेकिन मैंने उनको क्या किया, अपनी साड़ी ठीक कर लो, ठीक बैठी है वो, मैं जानबूझ के कर रही थी सिर्फ। और जैसे ही मैंने इशारा किया, क्या हुआ, वो पूरे हलचल में आ गए, क्या करना है मुझे समझ नहीं आ रहा। आप देखिए, प्रैक्टिकली देखिए, जरूरी नहीं है कि हमारा हर एक्शन, हमारा हर विचार, हमारा हर शब्द सामने वाले तक सही रूप से पहुंचेगा। हमें क्या लगता है, हमने तो बोला था ना, सही रूप से बोला था, सामने वाले को समझ में आना चाहिए था। नहीं आया समझ में तो किसकी प्रॉब्लम है, किसकी प्रॉब्लम है, ज्यादा किसकी है, ज्यादा सुनने वाले की है। अभी भी आगे आगे बढ़ के पूछते हैं आपसे ये, तो एक्शंस के द्वारा भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। एक छोटा सा जैसे कि उदाहरण देते हैं, आप ऑफिसर्स हैं मैक्सिमम यहाँ पर जो बैठे हैं, या हम गृहस्थी में भी बैठे हों, हम क्या करते हैं, हमारे माइंड में कोई बात क्लियर है, ठीक है, हमें पता है ये बात हमको उनको बतानी है। अब हम खुद जल्दी में हैं, या हम ऑफिसर हैं, हम थोड़ा सा यू नो ईगो भी है, सब कुछ है, हम क्या करते हैं, किसी को बुलाया, भाई साहब आप बताइएगा ऐसा होता है या नहीं, किसी को बुलाया, सबऑर्डिनेट को बुलाया, या अपने घर में फैमिली मेंबर को बुलाया, हम जल्दी में हैं। ऐसा है, मैंने वो कबर्ड में एक रेड कलर की फाइल रखी है, उसमें एक्चुअली तो 5 फाइल है, बट उसमें से रेड कलर की फाइल निकाला, उस रेड कलर की फाइल को बाहर निकाल के उसमें 5वें नंबर पे एक पेपर रखा हुआ है, उस पेपर को आपको फोटोकॉपी कराना है, फोटोकॉपी करा करके उसको स्कैन करके फलाने ऑफिसर को भेजना, वहां से जब उसका रिप्लाई आएगा तो जो ग्रीन कलर की फाइल है उसमें आपको उसको सबसे आखिरी में रखना है, और वहां से जब वो आएगा तो उसका 1 सेकंड कॉपी बना करके फलाने ऑफिसर को दे देना, वहां से जो उसका रिप्लाई आएगा उसको पंच कर करके वहां पर दूसरे ऑफिस में आपको भेजना है, ठीक है। आया मजा, आया मजा, क्या होगा। अब आप बताइए, मैंने कम्युनिकेशन सही बोला किया या नहीं किया। मैं दोबारा रिपीट कर सकती हूं, मुझे पता है मैंने क्या बोला है, मैं रिपीट कर सकती हूं, एग्जैक्टली रिपीट कर सकती हूं मैंने क्या बोला है, इसका मतलब मैं तो गलत नहीं हूं। मैंने सही नहीं किया कम्युनिकेट, वेरी गुड, मैं दोबारा कर सकती हूँ, इसका मतलब मेरे मन में तो क्लियर है ना मैं क्या चाहती हूँ। यही मैंने अभी आपको बताया, सबसे पहले हमने क्या किया थॉट्स के थ्रू। अब थॉट्स की क्लैरिटी कहाँ है, यहां पर है, ठीक है, उसके थ्रू मैंने कम्युनिकेट किया। लेकिन जब मैंने किसी व्यक्ति को अपने पास बुलाया और उनको मैं कुछ आगे का टारगेट दे रही हूं, तो क्या मैंने ये जानने की कोशिश की कि वो व्यक्ति भी मेंटली रूप से सुनने के लिए तैयार है या नहीं। अगर मैं उसको कुछ कम्युनिकेट करना चाहती थी तो मैं उनको बोल सकती थी, एक पेपर पेन ले आओ, मैं आपको बताती हूँ और ये पूरा दिन करके रखिएगा। ये तरीका होना चाहिए था या नहीं, होना चाहिए था। मेरी थर्ड कबर्ड में रेड कलर की एक फाइल रखी है, फाइल्स तो पांच हैं, लेकिन उसमें से जो रेड कलर की फाइल है उसमें से फिफ्थ पेपर आपको निकालना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, आप उसको पूरा डिक्टेट कराते। और जब क्योंकि हम ऐसा नहीं करते हैं तो सामने वाला भी कंफ्यूज होता है और उसका कुछ का कुछ और कर देता है। और जब हम शाम को वापस आते हैं, दोपहर को वापस आते हैं और पूछते हैं कि ये काम हुआ क्या, तो सामने वाला भी क्या कहता है, जितना समझ में आया उतना हुआ है ना, जितना समझ में आया उतना हुआ, या कुछ गड़बड़ भी हो गया तो। और हम क्या कहते हैं, आपको इतनी सी भी बात समझ में नहीं आती, इतनी सी भी बात समझ में नहीं आती, कैसे समझ पाएगा वो, आपके शब्द क्लियर नहीं थे, आपने उसको लिखने का समय नहीं दिया, आपने उसको बात समझने का भी समय नहीं दिया। और कई बार वो ऑफिसर इतना बड़ा भी हो सकता है कि आप दोबारा पूछते हुए भी डर रहे हैं उससे, या वो बड़ा हो सकता है या वो गुस्से वाला हो सकता है कि आपको पूछते हुए भी डर लग रहा है आप दोबारा। तो पूरा करने के बाद प्रैक्टिकली बात यह है कि काम तो गड़बड़ हुआ ना, काम तो सही नहीं हुआ, तो उस कम्युनिकेशन का क्या फायदा जो कम्युनिकेशन ही गलत हो रहा है, जो सामने वाला समझ ही नहीं पा रहा। जितना कम्युनिकेट करना इंपॉर्टेंट है उतना सामने वाले का समझना भी कम्युनिकेट करने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कितना समझ पा रहा है। तो वो थ्रू एक्शंस भी हो सकता है, थ्रू बॉडी लैंग्वेज भी हो सकता है। कहीं बारी कोई ऑफिसर हो, कोई व्यक्ति हो, उसके सिर्फ चाल चलने के तरीके से हम क्या कहते हैं, अभी मत जाना, व्यक्ति टेंशन में लग रहा है, बोल देते हैं या नहीं, है ना। सिर्फ चाल चलने के तरीके से थोड़ा सा स्पीड तेज होगी तो हम क्या कहते हैं, अरे बाप रे अभी साइड हो जाऊं। कोई छुट्टी मांगने जा रहा हो तो क्या कहते हैं, उसका चेहरा देख करके, नहीं अभी गुस्से में है सर, अभी मत जाना, शाम तक जाना, बोलते हैं या नहीं बोलते हैं। कैसे कैसे दिखाई दिया, उसने आपको कुछ कहा तो है ही नहीं, यस, क्योंकि उसकी बॉडी लैंग्वेज आपको बता रही है कि वो व्यक्ति किस तरीके के मूड में है। अर्थात बॉडी लैंग्वेज भी कम्युनिकेट करती है कि किस प्रकार से कैसा रिस्पॉन्ड आगे करना है। फिर आपके लुक्स, लुक्स कैसे होते हैं, नॉर्मल तो हम ऐसे ही हैं, नॉर्मल तो ऐसे ही हैं, लेकिन अगर मेरे को किसी के ऊपर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो मैं क्या करती हूँ, मैं मतलब नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, बस ऐसे एक देखेंगे, देव भाई ठीक नहीं है, आंखें ही बोल देती हैं अपने आप में, बोलते हैं नहीं बोलती हैं, आंखें ही अपने आप में बहुत कुछ बोल देती हैं। हमारे लुक्स, हमारा बिहेवियर, हमारा बॉडी लैंग्वेज, हमारे शब्द, हमारे सोच, हमारे एक्शंस, ये सब मिल करके कम्युनिकेट कर रहे हैं। कोई एक चीज एक टाइम पे नहीं कर रही होती। कई बारी जब हम बोल रहे हैं तो सिर्फ बोलना नहीं, हमारा किस प्रकार से उसके साथ खड़े होना है वो भी कम्युनिकेट कर रहा होता है। एक ही टाइम पे हम कई सारे जेस्चर्स को यूज कर रहे होते हैं सामने वाले के साथ। अब वो कहीं पकड़ में आ रहे होते हैं, कहीं पकड़ में नहीं आ रहे होते हैं, तो वहां प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लास्ट कम्युनिकेशन है, जो कि सबसे खतरनाक कम्युनिकेशन है, वो कौन सा है, साइलेंस वाला। एक्चुअली बहुत अच्छा कम्युनिकेशन है, लेकिन मैंने खतरनाक इसलिए बोला क्योंकि अक्सर लोग जब किसी से नाराज होते हैं तो क्या करते हैं, साइलेंस में चले जाते हैं और क्या कहते हैं, इसके साथ बात न करना ही सबसे अच्छा है। जिंदगी तो नहीं चलेगी बात ना करके। साइलेंस इज नॉट द वे टू कम्युनिकेट। हाँ, कई केसेस में इट इज इम्पॉर्टेंट, जैसे एक माँ और बच्चा होता है, बच्चा कुछ गलती करता है, माँ क्या करती है, थोड़ी देर चुप हो जाती है और बच्चा अपने आप अपनी गलती समझ लेता है, वहां वो कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, जहां पर माँ को हाथ ना उठाना पड़े, कुछ कहना ना पड़े। बट क्योंकि मम्मी चुप हो गई है, इसका मतलब है मम्मी मेरे से गुस्सा है। क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया टाइम पे, इसलिए मम्मी चुप हो गई है। अभी तक माँ बच्चे के पीछे भाग रही थी, बेटा खाना खा ले, बेटा पढ़ ले, बेटा ये कर ले। अब क्या होगा, क्योंकि मम्मी चुप हो गई है तो अब क्या होगा, आप बच्चा मम्मी के पीछे पीछे दौड़ेगा, मम्मा आप मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे हो, मैं खा रहा हूं ना खाना, मैं खा रहा हूं, मैं आ रहा हूं ना खाना खाने। वो कपड़े भी समेट देगा, वो सब कुछ कर लेगा। क्या करा माँ ने, साइलेंटली एक चीज कम्युनिकेट कर दी कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। इट्स अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। लेकिन हर वक्त अगर हम खामोश हो जाएंगे और साइलेंटली कम्युनिकेट करेंगे तो शायद उसका रिजल्ट उतना नहीं निकलेगा। फिर देखते हैं कि क्या कारण है कि ये कम्युनिकेशन गैप्स आ रहे हैं। सबसे पहले अगर देखें तो लैक ऑफ एक्सप्लेनेशन। हम बातों को, अपनी चीजों को ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाते किसी को, ऐसा समझते हैं। जैसे एक्सप्लेन करना चाहिए, जैसे उस बात को रखना चाहिए, वैसे हम नहीं रख पाते। होता है ऐसा? आपके पास नोटपैड पेन है? मैक्सिमम लोगों के पास है नोटपैड पेन, अभी है? ओके, बाहर निकाल लीजिए। एक एक्टिविटी करेंगे, आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कीजिए, उस लाइन को ए और बी नाम दे दीजिए, ए से एक और लाइन खींचिए, उसको सी नाम दे दीजिए, सी से एक और लाइन खींचे, उसको बी से कनेक्ट कर दीजिए, और सी से एक रे खींचिए, उसको ई और एफ नाम दे दीजिए। बात समझ में नहीं आती है आपको? आपको क्या लगता है, मतलब हम कम्युनिकेशन पे करा रहे हैं तो हम एक ही बात को दोहराते रहेंगे क्या आपके लिए? नहीं, क्या चाहते हैं आप? यहीं पर इतना ही कराना है क्या हमको सेशन? आगे नहीं बढ़ना है क्या हमको? मतलब आप गलती भी अब मेरी निकाल रहे हैं? अच्छा, अभी मैंने सिखाया और अभी मैं ही गलत बोल रही हूं? वाह, हम जीतने भी नहीं देंगे आपको। देखिए, एक बहुत सिंपल सी एक्टिविटी कराई मैंने आपको, शुक्र मनाइए, थैंक यू बोलिए, मैंने आपको इतना समय दिया कि आप नोटपैड पेन बाहर निकाल लें, वरना वो भी ना देती। कई बारी हम जब कम्युनिकेशन करते हैं तो इसी तरीके के हमारे कम्युनिकेशन, जैसे मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया, क्योंकि मेरे माइंड में कोई पिक्चर क्लियर है तो हम क्या करते हैं, उसको इंस्टेंटली बोलना शुरू करते हैं और सामने वाले को समय नहीं देते। लैक ऑफ एक्सप्लेनेशन, मैंने एक्सप्लेन ही नहीं किया। एंड समटाइम्स वी क्रिएट बैरियर्स ऑल्सो, कि आप मेरे से कुछ पूछ नहीं सकते और कुछ पूछोगे तो मैं रिपीट नहीं करूंगी। मैं दोबारा दोहरा देती हूँ, एक लाइन ड्रॉ कीजिए, उसको ए और बी नाम दे दीजिए, ए से एक और लाइन खींचिए, उसको सी नाम दे दीजिए, बी से एक और लाइन खींचिए, उसको सी से कनेक्ट कर दीजिए, सी से एक रे खींचिए, उसको ई और एफ नाम दे दीजिए। हो गया? अब भाई साहब, आप भी कुछ बना रहे थे, आपका तो हम देख सकते हैं कम से कम। हाँ, बनाया तो ठीक है लेकिन उल्टा कर दिया बस। तो बनाया सबने, पता नहीं भगवान जाने बना क्या होगा, लेकिन बनाया तो है, प्रयास किया है, कुछ ऐसा बनाना था, बना कुछ ऐसा बनाना था, कुछ और बना लेकिन बन गया, ये नहीं बना। आप प्रैक्टिकली बताइए, ये बनाना इतना डिफिकल्ट था? अगर मैं आपको पहले ये कहती कि हम जो एक्टिविटी करने वाले हैं इसमें कुछ ट्रायंगल शेप का बनेगा और उसके ऊपर एक रे होगी तो बन जाता, क्योंकि मेरे माइंड में क्लियर था कि मुझे क्या बोलना है। मैं बोलती चली गई और मैंने आपको सोचने समझने का समय नहीं दिया। और फिर बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि आप लिख तो रहे थे, बना तो रहे थे, लेकिन फिर भी पड़ोसी में देख रहे थे वो क्या बना रहा है। इसकी भी चीटिंग करनी पड़ रही थी। क्या फायदा हुआ इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने का? एक ट्रायंगल बनाना नहीं आता आपको? एक ट्रायंगल नहीं बना पा रहे आप? गलती आपकी नहीं थी, अभी भी नहीं मान रहे। यही तो प्रॉब्लम है कि हम में से कोई भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, ना बोलने वाला ना सुनने वाला। हार मान लेना गलत नहीं है, क्योंकि जब तक इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे कि मैं सही, तब तक संबंध खराब ही होते रहेंगे। किसी को तो झुकना पड़ेगा। इसीलिए सबसे पहले जो था लैक ऑफ एक्सप्लेनेशन, अगर यहां पर वही चीज का एक्सप्लेनेशन सही देते तो आपको तकलीफ नहीं होती। तो कोई भी बात आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको क्लियरली बोलिए कि आप क्या कहना चाहते हैं। सेकेंड इज असम्पशंस, अनुमान लगाना। बहुत आसान है और पूरा टाइम हम यही करते हैं। वो मेरे बारे में ये कह रहा होगा, वो ये सोच रहा होगा, कह रहा है नहीं कह रहा है हमें पता नहीं, बट हम अनुमान लगा रहे हैं। आप चल रहे हैं, चलते चलते चार लोग आपको देख लें, क्या होगा? ये मुझे क्यों देख रहे हैं? वो आपको नहीं देख रहे, उसके पीछे जो पेड़ था ना वो तो उसको देख रहे थे, लेकिन हमें क्या लग रहा है? हमें देख रहे हैं। हर कोई किसको देख रहा है? मुझे ही देख रहा है बस। प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत कुछ एज्यूम कर रहे हैं जो हो भी नहीं रहा, जो हो भी नहीं रहा। अच्छा चलिए, मैं कहती हूं आप ही के बारे में बात कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं और आप ही के बारे में कर रहे हैं। अच्छा तो चलिए और भी नेगेटिव बात करते हैं कि वो आपके बारे में नेगेटिव ही बोल रहे हैं, अच्छा भी नहीं बोल रहे वो आपके बारे में। आप कर क्या लेंगे? कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। तो कम से कम अपने आप में ये सोच के तो खुश हो जाइए कि आजकल देखो मैं लोगों के लिए बातचीत का विषय बना हुआ हूं। ये तो सोच के खुश हो सकते हैं ना, क्योंकि देखिए जुबान तो हम वैसे भी बंद नहीं कर सकते। सोच सोच के परेशान जरूर हो सकते हैं। तो दूसरे क्या सोच रहे हैं अगर वो भी मुझे सोचना है, जो दूसरे क्या सोच रहे हैं वो भी मुझे सोचना है, तो फिर मैं इसको जो सोचना चाहिए वो कौन सोचेगा? प्रैक्टिकल देखें तो मेरे को जो सोचना है, जिसका दिमाग एक्चुअली सही चल रहा है, अगर मैं ये देखती रहूंगी तो मैं कभी भी ना खुश रह पाऊंगी ना ढंग से किसी के साथ व्यवहार कर पाऊंगी। तीसरा जो है मिसकंसेप्शन। बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स के बाद मिसकंसेप्शन भी उसी का ही भाई है कि ऐसा हुआ होगा, उसने ये किया होगा, उसने वो रखा होगा। मिसकंसेप्शन लेकर के बैठे हैं और कई कई साल गुजार देते हैं। आपसे पूछा जाए कि आज आपने सुबह क्या खाया था तो शायद याद ना हो, लेकिन किसी के साथ कुछ वार्तालाप में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो हम क्या कहते हैं? जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। और कई लोग याद भी रखते हैं, प्रैक्टिकली कई लोग याद रखते हैं। मैंने तो कई बुजुर्गों से सुना है, उसने ना मेरे नाल एक किया सी। अरे कब किया था? वो बंदा मर गया, उसने मेरे साथ ये किया था। क्या याद रख के बैठे हैं? और किसको परेशानी हो रही है? किसको हो रही है? वो बंदा तो निकल लिया, और हुआ था नहीं हुआ था उसमें भी कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग थी पता नहीं। शब्दों का हेर फेर तो हो ही सकता है ना, उसमें भी कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग थी पता नहीं। अरे इससे अच्छा तो जीवन जी रहे हो, बात करो, क्लियर करो, आगे बढ़ो ना। क्लियर करते चलो, आगे बढ़ते चलो, जितना उसको बांधते जाएंगे उतनी यहां पर गांठें बढ़ती जाएंगी। इसीलिए आज ब्रेन हैमरेजेस भी इतने हो रहे हैं, क्योंकि गांठें कहां पड़ रही हैं? जितने रिश्तों में पड़ रही हैं उतने शरीर में भी बढ़ रही हैं। कभी कहीं हो रही है, कभी कहीं हो रही है, क्लॉटिंग्स हो रही हैं। क्यों? क्योंकि जितने रिश्तों की गांठ हैं उतनी दिमाग में पड़ रही हैं और उतने ही बॉडी में भी बढ़ रही हैं, तो उनको खोलने का समय बांधने का नहीं है। फिर हम इमोशंस के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, हम क्या समझते हैं, क्या भावनाएं हैं हमारी, थोड़ा सा फास्ट लेंगे इसको। डिफरेंसेस, हमारे आपस के जो म्यूचुअल डिफरेंसेस हैं उसके कारण भी कम्युनिकेशन गैप होता है। कई बारी तो बस क्योंकि मुझे इसको देख करके अच्छा नहीं लग रहा इसलिए बात नहीं कर रहा मैं, हुआ कुछ नहीं है। कभी कुछ हुआ था क्या? नहीं, मैंने जिंदगी में कभी बात ही नहीं की। लेकिन पता नहीं जब इसको देखता हूं ना, कुछ हुआ था क्या? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, कभी राम राम भी नहीं हुई इसके साथ। लेकिन जब भी इसको देखता हूं, अब इस प्रॉब्लम का किसके पास सॉल्यूशन है? हमें निकालना पड़ेगा ना सॉल्यूशन, नहीं तो वो जब जब दिखेगा क्या याद आ रहा है? वही याद आ रहा है कि इसके साथ कुछ प्रॉब्लम है। तो उसको तोड़ने की जरूरत है। देन कई बार हमारे सेल्फिश मोटिव, हम बोल कुछ रहे हैं लेकिन अंदर से हमारे मोटिव क्या है? कुछ होशियारी है, चालाकी है, जिसके कारण से भी सामने वाले को सब कुछ समझ में आ रहा होता है। हमें लगता है उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, समझ सबको सब कुछ आ रहा होता है, और हम क्या कहते हैं, मैंने ना ऐसे कर दिया, वो रख दिया था, वो ऐसा हो गया था, और सामने वाले को भी पता है झूठ बोल रहा है, या ये जो बोल रहा है इसके पीछे कारण कुछ और है, प्रेजेंट कुछ और किया जा रहा है। तो जो है जैसा है वैसे प्रेजेंट कर देना, थोड़ी तकलीफ होगी सामने वाले को स्वीकार करने में, लेकिन आप हल्के रहेंगे। जिसके लिए मैं कई बार कहती हूं कि कई लोग दो चेहरे, दो मास्क लगा के घूमते हैं, कहीं तो बहुत सारे लगाते हैं रावण की तरह, कई सारे लगा के घूमते हैं, लेकिन कम से कम दो मास्क तो नॉर्मली कईयों के होते ही हैं। एक तो वो जो सिर्फ आप देख पा रहे हैं, और एक वो जो आप लोगों को दिखाने के लिए लगाते हैं। तो जब खुद को देखेंगे तो कुछ और दिखाई दोगे, जब लोग देखेंगे तो सिर्फ देख के ताली बजाएंगे। लेकिन सच्चाई क्या है? आप वो हैं जो आप अकेले हैं, और वही चीज अगर हम लोगों के सामने रखें तो लोग भी हमको वैसे ही स्वीकार करेंगे जैसे हम एक्चुअली हैं। फिर है लैक ऑफ लिसनिंग स्किल्स, हमारे सुनने की भी जो क्षमता है वो बहुत कम हो गई है। इसके ऊपर भी एक एक्टिविटी करते हैं। एक छोटा सा एक एक्टिविटी करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कीजिए, अब मैं क्लियरली बोलूंगी। हाँ, एक लाइन ड्रॉ कीजिए, लाइन के दोनों तरफ, आपको अपने नाम का पहला और आखिरी अल्फाबेट लिखना है। लाइन के दोनों तरफ अपने नाम का पहला और आखिरी अल्फाबेट लिखना है। हो गया, सबका हो गया? पहले बता दीजिए, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम तो नहीं थी? अच्छा, कैसे लिखा? जैसे कि पहला अक्षर और आखिरी अक्षर, जैसे मेरा नाम ख्याति है, तो पहले क्या लिखा? के, लास्ट में लिखा आई, ऐसे ही लिखा? नहीं। अच्छा, ये महान काम किस किसने किया? हाँ, हाथ खड़ा कीजिए। हाँ, वो महान लोग हाथ खड़ा कीजिए जिन्होंने ऐसा किया, पहला भी और आखिरी भी। वेरी गुड, थैंक यू। अब जिन्होंने ऐसा नहीं किया वो इनके लिए ताली बजाइए। क्यों? क्योंकि यही कहा गया था, क्या करना था? लाइन के दोनों तरफ अपने नाम का पहला और आखिरी अल्फाबेट लिखना है। अब जो नहीं कर पाए वो भी मेरे को क्रिटिसाइज कीजिए, आपने सही नहीं बोला अभी भी। जो कर पाए वो कहेगा वेरी गुड, जो नहीं कर पाए वो क्या कहेगा? आप में दिक्कत थी। ये दिक्कत कभी खत्म नहीं होगी, होगी ये दिक्कत कभी खत्म नहीं हो सकती। तो इसीलिए कम्युनिकेशन हमेशा ही करते रहेंगे, लेकिन ये प्रॉब्लम भी सदाकाल बनी रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि हम इंग्लिश में ही उसको कम्युनिकेट करें, जरूरी नहीं है कि हम उसको बहुत सोफेस्टिकेटेड एक अच्छे अच्छे शब्दों का चयन करके कि सामने वाला समझ ही नहीं पा रहा है ऐसे शब्दों में सामने वाले को परोसें। अरे ऐसी भाषा यूज कीजिए जो सामने वाला समझ तो पाए। हम हिंदी बोलने वाले लोग, मातृभाषा हमारी हिंदी है, हिंदी में बोलते हुए गर्व होना चाहिए ना। दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है, हिंदी में बात करें सामने वाला समझ तो पाए। मुझे क्योंकि इंग्लिश आती है, मुझे क्योंकि पंजाबी आती है, तो मैं वो भाषा बोलनी शुरू करूं, वीर जी तो समझ जाएंगे, बाकियों का पता नहीं। फायदा क्या हुआ, मुझे क्या आता है, इट इज नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट ये है कि मैं सामने वाले तक अपनी बात पहुंचा सकूं। तो वो सिंपल कम्युनिकेशन की जरूरत है। और एक लास्ट चीज जिसको हम अभी लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें और भी हैं, एक लास्ट चीज इसको हम लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है कम्युनिकेशन, दूसरा है लिसनिंग, और तीसरा है इसी कम्युनिकेशन के साथ। क्योंकि अगर हमारा सामने वाले पर विश्वास नहीं है तो कहां प्रॉब्लम आती है वो भी हम देखते हैं। एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे, आप में से कोई दो भाई सामने आ जाइए, आ जाइए, कुछ नहीं होगा, आ जाइए। नहीं नहीं छोड़िए जी, वहां पर आपके पास हैंकी है, किसी के पास हैंकी, आ जाइए स्टेज पे, आ जाइए प्लीज, कम ऑन दी स्टेज, स्टेज पर आ जाइए। आ जाइए, थोड़ी देर के लिए ऐसा एज्यूम करते हैं कि आप जो हैं, बस 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 भाई साहब, थोड़ी देर के लिए एज्यूम करते हैं कि आप जो हैं इनके सबऑर्डिनेट हैं, ठीक है। थोड़ी देर के लिए एज्यूम करते हैं, यू आर दी बॉस, आप सबऑर्डिनेट हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, आपके पास भी हैंकी है क्या, अच्छा इट्स ओके। आपको ये हैंकी इनके आंखों पर बांधना है। बांधने के बाद आपको मैं एक रास्ता दिखाऊंगी, उस रास्ते से आपको इनको लेकर के जाना है, ठीक है। आपको हम ये गारंटी देते हैं कि आपको हम गिरने नहीं देंगे, आपको हम कुछ होने नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन आपकी आंखें बंद होंगी और वो आपको गाइड करेंगे, आपको वैसे ही चलना है, क्लियर है, ठीक है। चश्मा उतार दीजिए, आप इनकी आंखों पर पट्टी बांध दीजिए, क्लियर हो गया। कह रहे हैं आपके भरोसे हूं, भगवान भरोसे नहीं रहे अब। अब हम भाई साहब की कम्युनिकेशन स्किल्स को टेस्ट करेंगे। हो गया जी, बस परमानेंट नहीं बांधना उसको। भाई साहब कुछ दिख रहा है, अच्छा जी। अब क्या करना है, आप इधर आ जाइए भाई साहब, ओके। अब आपको क्या करना है, आपको पता है आप किस पोजीशन में खड़े थे, ठीक है ना भाई साहब, है ना, ओके। तो अब आपको मैं कुछ एक्शन करके दिखाऊंगी, आपको पहले केवल उस एक्शन को देखना है, बोलना नहीं है, सिर्फ आपको मुझे देखना है। जब मैं पूरा कर दूंगी और मैं आपको बोलूंगी स्टार्ट, उसके बाद आप इनको उस रास्ते से वॉक करवाएंगे, क्लियर है, ठीक है। अब आपको बोलना नहीं है, जस्ट लुक एट मी, अभी नहीं, अभी नहीं, क्लियर है, ओके। अब आप इनको चलाना शुरू कीजिए,
ठीक है। मैं इनसे बात भी कर सकता हूँ,
आप इनको बात कर सकते हैं, आप इनको राइट लेफ्ट सब कुछ बोल सकते हैं, बट आप इनको टच नहीं कर सकते, ठीक है। हाथ लगा के आप गाइड नहीं कर सकते, आप मुख से गाइड करेंगे इनको। और एक मिनट, और जब आप इनको गाइड करेंगे तो आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो गिरने नहीं चाहिए नीचे, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है भाई साहब, अब आपकी बागडोर इनके हाथ सौंप रहे हैं हम,
अच्छा इनको इसके ऊपर से ले जाना है कि नहीं ले जाना। अच्छा अब आपको मैं जो बोलूंगा बहुत ध्यान से सुनिएगा, स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। नहीं सुने, हाँ करेक्ट करेक्ट। तो अब आप ऐसा कीजिए, आपको चलना है करीब 5 फुट सामने, फिर आप राइट टर्न लेंगे स्टेज की तरफ, लेकिन बहुत ध्यान से गाइड करूंगा, आपका एक भी स्टेप में गिरने का कोई चांस नहीं है। हिम्मत है चल लेंगे, घबरा रहे हैं तो अभी अभी चलने को बोला नहीं मैंने आपको, एक स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। ओके अगर अब आपने क्या करना है राजकुमार जी, जब मैं बोलूंगा चलें तभी चलिएगा, ठीक है अभी मत चलिए,
हम बैठ के नजारा देखते हैं।
आपने अब आपने जो चलना होगा, एक एक स्टेप बोलूंगा, स्टेप वन स्टेप एट ए टाइम चलिए, ताकि अगर आपने जरा भी कहीं गलती की, बहुत अच्छा मार्जिन दूंगा हर साइड से, अगर जरा भी गलती की तो आपको रोक दूंगा, ठीक है। और स्लो चलिएगा एक स्टेप एट ए टाइम, जब मैं लेफ्ट बोलूं तब लेफ्ट चलिए, जब राइट बोलूं तब राइट पैर चलिए। ओके नहीं पहले बताना पड़ेगा ना। अब आप अपना लेफ्ट पैर आगे रखिए और बिल्कुल ठीक है, अब राइट आगे रखिए, अब लेफ्ट आगे रखिए और अब लेफ्ट पैर को और लेफ्ट पे कीजिए थोड़ा सा, बिल्कुल ठीक है। अब राइट पैर आगे कीजिए, नहीं थोड़ा सा पीछे लीजिए उसको बस, क्योंकि यहाँ पे सीढ़ी पड़ी है, यहाँ पे वो वायर है इसलिए आपको वायर के ऊपर से आना है। अब अपना लेफ्ट पैर को ऊपर उठाइए और अब आगे रखिए, नहीं नहीं सीढ़ी के तार के ऊपर से नहीं, तार के ऊपर नहीं रखना, तार से ऊपर पार सीधा, 1 फुट लंबा पैर लीजिए अब आगे, गुड, और आगे 1 फुट से और लंबा, गुड, अब दूसरा भी 1 फुट पूरा लीजिए, हाँ गुड। अब आपने तार पार कर लिया, अब आपको वापस जाना है तो पहले 1 फुट सामने आराम से चलिए, यहाँ कोई डेंजर नहीं है, डेंजर आएगा तो मैं आपको पहले ही डेंजर बोल दूंगा। अब आपने राइट टर्न लेना है, दाएं मुड़िए, पूरा राइट लीजिए और राइट हो जाइए, ताकि आप स्टेज, अब आप बिल्कुल डायरेक्टली फेस कर रहे हैं जहाँ बैठे, जहाँ स्टेज को सब लोगों को, जैसे मैम देख रही थी वैसे, जैसे दीदी देख रही, जैसे ख्याति दीदी देख रही हैं आप, बिल्कुल उनके पैरेलल ही खड़े हैं, पर हम दोनों आगे खड़े हैं स्टेज के, उनसे 2 फुट आगे खड़े हैं। अब आपको वही तार जो आपने क्रॉस की थी आपको फिर से क्रॉस करनी है, तो अब आप एक सिर्फ आधा फुट आधा पैर आगे रखिए, मतलब आधा, हाँ ठीक है, अब दाहिना पैर जो है फिर आधा रखिए आगे। अब आप तार के बिल्कुल पास हैं, तो अब आपने करीब 1 फुट से ज़रा लंबा पैर आगे रखिए, ठीक है। अब आप राइट, अब अपना पैर पीछे कीजिए राइट वाला थोड़ा, नहीं तो तार में अड़ सकता है, तार में अड़ सकता है, अब आप आगे लीजिए, ठीक है। अच्छा अब हम स्टेज के, आप स्टेज से करीब 4 फुट दूर है, मैं स्टेज से करीब 2 फुट दूर हूँ, मैं हटूँ क्या? अच्छा मैं इनको गारंटी दे रहा था कि मैं उनके साथ हूँ, ओके ओके, ये भी अलाउड नहीं है, ठीक है। अब आप बिल्कुल अच्छा फॉलो कर रहे हैं मेरी सारे डायरेक्शंस, आप वैसे ही करते रहिएगा तो आप बड़े आराम से पूरा काम पूरा हो जाएगा। ओके ओके ओके, अब आप अपना लेफ्ट पैर आगे लीजिए और राइट पैर अभी मत चलाए, नहीं मत चलाइए, नहीं तो आप टच कर देंगे, फ्लावर वॉज है। अब अपना लेफ्ट पैर को लेफ्ट साइड पे लीजिए, नहीं नहीं पैर सीधा कीजिए जैसे पहले था, हाँ। अब आप लेफ्ट की तरफ 1 फुट लेफ्ट पे जाइए अपने लेफ्ट फुट से, नहीं हाथ नहीं रहा, आप वापस आइए जैसे थे, जैसे थे, हाँ गुड, और आगे आइए। अब आगे और राइट पैर नहीं हिलाना, लेफ्ट पैर को ही लेफ्ट पे लीजिए, बहुत मुश्किल है
पट्टी खोलिए उनकी। भाई साहब मजा आया आपको, आपको तो पता नहीं आपको, भाई साहब थैंक यू, आपके कारण इन सबको बहुत मजा आया और उनसे ज्यादा आपको,
चक्कर भी नहीं लगाए और गिरे भी नहीं।
अब आप मुझे बताइए कैसा कॉम्बिनेशन था, उनके गिरने से ज्यादा खतरा तो एक पैर उठाने से पड़ गया था कि उठाएं या ना उठाएं, कहते आधा पैर उठाओ, अब आधा पैर कैसे उठाया जाता है, कमाल ही हो गया। चलिए आप दोनों को बहुत बहुत थैंक यू, आपने कम से कम पूरी क्लास को हंसा तो दिया, एंटरटेनमेंट हो गया सबका। बहुत सिंपल सी बात है कि जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो सामने वाला हम पर विश्वास रखता है, और उसके विश्वास पर हमको खरे उतरना होता है। अगर हम ही खरे नहीं उतर रहे तो वो अगली बार आप पे विश्वास नहीं करेगा। बहुत सिंपल है, चाहे आंखें बंद क्यों ना हो, आपको बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी, आपको गिरने नहीं देंगे। ठीक है, एक नॉर्मल इंसान की चाल कैसे होती है? नॉर्मल चाल, ठीक है। और उनको क्या कहा गया? आपको तो चलना ही नहीं है जब तक मैं ना बताऊं। आधा पैर उठाओ, पौना पैर उठाओ, आप बताइए कि कम्युनिकेशन की तो क्या हालत कर दी है। सामने वाला क्या करेगा? अगली बार आप पे विश्वास कर पाएगा? कर पाएगा नहीं। इंस्ट्रक्शन इतनी लंबी थी कि खत्म नहीं हो रही थी, और कर्म करने के समय पे छोटा हो गया। इसीलिए बहुत जरूरी है इस चीज को समझना कि हमें ये भी समझना है उस समय पर कि सामने वाले की आंखें बंद हैं, उसकी साइकोलॉजी क्या हो गई है, वो आप पर डिपेंडेंट हो गया है। आपको उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि उसकी आंखें बंद हैं अभी। जिस तरीके से हम बात करेंगे, सामने वाले का कॉन्फिडेंस गिर रहा है कि उठाऊं भी ना उठाऊं पैर। तो सामने वाले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितना मैं अंदर से क्लियर होऊंगा, कम्युनिकेशन मेरा क्लियर होगा, सामने वाले का कॉन्फिडेंस, विश्वास मेरे ऊपर बढ़ता है। और सिर्फ एक बार के लिए नहीं, हमेशा के लिए बढ़ता है कि इनसे हम बात करेंगे ना तो हमें क्लियर बात समझ में आएगी। और कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं इनसे बात करेंगे ना वो गोल गोल करके खत्म कर देंगे लेकिन समझ कुछ नहीं आएगा। और फिर क्या कहते हैं, कहना क्या चाहते थे, है ना, यही बोला जाता है ना भाई, कहना क्या चाहते हो, क्यों? क्योंकि समझ में ही नहीं आया। कम्युनिकेशन इज ऑलवेज अ टू वाइजर थिंग, कि दोनों तरफ से चल रही है वो चीज, वो वन साइडेड कभी भी नहीं है। दिखने में लगता है, सुनने में लगता है कम्युनिकेशन इज अ वन साइडेड थिंग, बट इट इज नॉट, वो डबल साइड से चल रहा है, दोनों साइड से है वो। तो कम्युनिकेशन करने वाला जितना इम्पोर्टेंट है, लिसनिंग करने वाला भी उतना इम्पोर्टेंट है। और कम्युनिकेशन करने वाले की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सामने वाले के अंदर वो कॉन्फिडेंस क्रिएट करे। तो आप सभी आगे, जो भी आपका अब आगे का समय है, जब आप अपने डीलिंग में आते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि कभी भी सामने वाले को आप बता रहे हैं, गिव देम टाइम कि वो आपकी बात को समझ सके, आपको अंडरस्टैंड कर सके। क्योंकि अगर एक पांचवी क्लास के बच्चे से हमको बात करनी है तो हम उसके स्टैंडर्ड पर आके बात करते हैं, उसको नहीं कहता यू मीट माई स्टैंडर्ड, हमेशा हम उसके स्टैंडर्ड पर आके बात करते हैं। इसीलिए जरूरत है एक दूसरे को समझने की कि किसका क्या लेवल है, कौन कितनी बात को मेरे समझ पा रहा है, और उस लेवल पर जाकर के कम्युनिकेट कीजिए। थैंक यू सो मच।
सभी को अच्छा लगा तो एक बार दीदी का दिल से थैंक्स करते हुए हम जोरदार ताली बजाएंगे। वाहन का कांच अगर क्लियर है तो यात्रा सुगम होती है, दर्पण क्लियर है तो प्रतिबिंब भी क्लियर आएगा, जीवन का लक्ष्य क्लियर है तो सफलता जरूर मिलेगी। और हम समझते हैं अगर हमारा संवाद क्लियर है तो हम एक गुड एडमिनिस्ट्रेटर्स बन सकते हैं। तो ये जरूरी है कि हमारा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो। अभी हमारे बीच में आदरणीय भ्राता घनश्याम भाई पंड्या जी बैठे हुए हैं, मैं उनका शॉर्ट में परिचय देना चाहूंगी। भाई सब वर्तमान में गांधीनगर के एजुकेशनल डिपार्टमेंट में एडिशनल सेक्रेटरी के महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद पर कार्यरत हैं। आप इस दायित्व पर रह करके आपने शिक्षा जगत में कई सारे सुधार किए, कई सारी मॉडर्न टेक्निक्स को उसमें शामिल करके अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आप इसके पूर्व डायरेक्टर ऑफ टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन के रूप में भी सफलतापूर्वक अपनी सेवाएं प्रदान कर चुके हैं। वर्ष 2024 के प्रारंभ में आपको देवभूमि द्वारिका जिले के आप जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर के रूप में भी नियुक्त रहे हैं। इस पद पर रहकर भी आपने कई विकास कार्यों एवं जन कल्याण योजनाओं के प्रबंध में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हुई है। और इसके पूर्व मोरवी जिले में भी आप जिला कलेक्टर के रूप में कार्य करते हुए आपने वर्ष 2022 में हुई मोरवी पुल दुर्घटना के दौरान संकट प्रबंधन, राहत एवं बचाव कार्यों में और तथा मीडिया से जो एक कन्वर्सेशन होना चाहिए उसमें आपने कुशलता पूर्वक और संवेदनशीलता के साथ उसको संभाला है। इस प्रकार की बेहतरीन प्रशासन एवं त्वरित निर्णय क्षमता के कारण आपका व्यापक रूप से सराहना की गई है। तो ऐसी विशेष हस्ती हमारे बीच में विराजमान है, मैं ससम्मान उनको मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। भाई सब आप भी इस विषय के बारे में अपनी बात रखेंगे।
गुड आफ्टरनून, ओम शांति। मंच पर विराजमान ख्याति दीदी, रीना दीदी, और मैं भी आपकी तरह एक पार्टिसिपेंट ही हूं, तो मेरे कलीग सब पार्टिसिपेंट्स। ख्याति दीदी ने क्लैरिटी इन कम्युनिकेशन के बारे में प्रेजेंटेशन और एक्सपीरियंस के थ्रू मोरलेस कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए ये हम सब लोग को क्लियर कर दिया। मैं थोड़ा सा अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और यहां पे जो थोड़ा डिस्कशन हुआ था आगे वाले टॉपिक में उसके बारे में ख्याति दीदी ने बताया कि हम लोग क्या कम्युनिकेशन, हम लोग सब ज्यादातर ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स यहां पे है, तो मेरा एक खुद का एक्सपीरियंस रहा है कि हम अपने सबोर्डिनेट को जब कुछ काम बताते हैं तो एक बार रिपीट करें और एक बार उससे रिपीट कराए। कि जैसे मैं इतना लंबा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन इस ड्रॉवर में 5 फाइल है, उसमें से जो रेड कलर की फाइल है उसको लेके प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को, पीए को दे के आओ, उसके बाद एक बार ऑल बोल दीजिए और उसको बोलिए कि मैंने क्या बोला, क्या करना है। तो मोर और लेस वही पे आपको पता चल जाएगा कि ये समझ गया है और वही वो रिपीट करेगा अगर सेम चीज, तो फिर वो काम खत्म हो जाता है। सिमिलरली जो भी हम बोलते हैं उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। कभी कभी हम लोग क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं कि सामने वाला जो बैठा हुआ है उसको पता ही नहीं चलता कि क्वेश्चन क्या है। भारत सरकार का एक कार्यक्रम चल रहा था, मैं एक एग्जांपल दूंगा, स्वच्छ भारत मिशन। भारत देश में गांव गांव में घर घर में तक टॉयलेट बन गए। अब एक स्कूल में एक टीचर जो था वो अपने स्टूडेंट को क्वेश्चन करता है कि किसके किसके घर में टॉयलेट बने हैं। क्वेश्चन सुनिएगा टीचर का, किसके किसके घर में टॉयलेट बने हैं। सारे बच्चे ने हाथ ऊपर कर दिया। एक कोई मेरा जैसा छोटा बच्चा था, वो कोने में बैठा हुआ था, उसने हाथ ऊपर नहीं किया। टीचर बोला कि तुम्हारे घर में टॉयलेट नहीं बना है। बोला नहीं, मेरे घर में तो आज दाल भात बने हैं। मतलब उसको ये पूछना चाहिए था कि टॉयलेट किसके घर में नहीं बना है या उस तरह का, मतलब क्वेश्चन में ही क्लैरिटी होनी चाहिए। वो तो बच्चे का एग्जाम्पल है, हम लोग भी कभी कभी क्वेश्चन कुछ और होता है और आंसर कुछ और देते हैं। हम लोग को यहां पे राजयोग के बारे में बताया गया, कर्मयोग टॉपिक ही हमारा था यहां पे। अगर हम योग की बात करें तो राजयोग को अष्टांग योग भी कहा जाता है। इसके अलावा बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर हम लोगों को अलग अलग जो योग है, जैसे कि हठ योग है, मतलब योग मीन्स, ये तो क्लियर है हमारे माइंड में अब कि योग मीन्स डिसिप्लिन। अष्टांग योग जो है वो बताता है डिसिप्लिन ऑफ माइंड। हठ योग, कभी कभी हठ योगी भी देखते हैं, तो डिसिप्लिन ऑफ बॉडी। भक्ति योग भी है, भगवत गीता का बहुत सारा यहां पे एग्जांपल दिया गया। तो भक्ति योग में डिसिप्लिन ऑफ इमोशन। कर्म योग है जो सिखाता है डिसिप्लिन ऑफ एक्शन। सिमिलरली कुछ ऐसे भी योग है जो जैसे कि मंत्र योग, कुंडलिनी योग, लेकिन हम लोग तो कर्म योग या राजयोग की ही बात करेंगे। जब हम कर्म की बात करते हैं, हम लोग यहां पे आज यहां पे इस दिन प्रेजेंट है। मैं सबसे पहले हमारे ग्रुप के लिए जो हम लोग यहां पे आए हैं उसके लिए हेमा दीदी और नरेश भाई का शुक्रिया अदा करेंगे कि उसके चलते हम लोगों को ये प्रोग्राम में आने का मौका मिला। लेकिन हम सब लोग आज यहां क्यों है? हमारे कुछ तो कर्म ऐसे होंगे। तो हम कर्म की बात करें तो कुछ तो होते हैं जैसे कि प्रारब्ध कर्म। हम जन्म लेते हैं, मुकेश अंबानी साहब के यहां अनंत अंबानी का जन्म होता है। क्यों मेरा जन्म वहां नहीं हुआ, क्यों किसी और का जन्म नहीं हुआ? तो उसके घर में जन्म लेना ही उसके लिए एक बेनिफिशियरी हो गया, बेनिफिट हो गया। मतलब उसका प्रारब्ध कर्म था, उसके पूर्व जन्म के कुछ ऐसे कर्म रहे होंगे कि वहां पे उसका प्रारब्ध कर्म कि जो हम बदल नहीं सकते, लेकिन हम लोग इस जन्म में कुछ ऐसे कर्म करें कि अगले जन्म में वो हमारे साथ ही रहे। दूसरा कर्म है संचित कर्म, जो हम जन्म लेने के बाद, समझने के बाद जो जो कर्म करते हैं, अब उसमें जो हो गया हो गया, अच्छा भी हुआ बुरा भी हुआ, उसमें हम कुछ अब कर नहीं सकते। लेकिन जो संचित कर्म है वो भी हमारे साथ चलते हैं। हमारे हाथ में जो है वो है फ्यूचर कर्म, जो अभी हम करने वाले हैं। तो हमारे को यही केयर करनी चाहिए कि आज हम लोगों को या दो पिछले दो तीन दिन में या हम लोग जो सीखे हैं अपने पेरेंट्स से, अपने गुरु से, वो ऐसे कर्म अब करें कि जिसके चलते हम लोग का जो आगे वाला लाइफ है वो बहुत ही अच्छा हो। हमारे जो वेद है उसमें उसके श्लोक में हम सुनते हैं, यहां पर भी बहुत सारे श्लोक गीता जी के बोले गए, तो अगर वो श्लोक ही एक पढ़ ले या उसका अर्थ हम लोग जान ले तो उसमें सारी की सारी जो बातें हैं, अगर वो कर्म योग हो, भक्ति योग हो या राजयोग हो, अष्टांग योग हो, सारी की सारी समावेश हो जाती है। मैं एक ऋग्वेद का श्लोक है, उसका जो तर्जुमा है वो मैं यहां पे बोलने की कोशिश करूंगा। मेरे ख्याल से आप लोग को पता चल जाएगा मैं कौन सा श्लोक बोल रहा हूं। पाप नाशक पुण्य स्वरूप, सुखदायक दुख नाशक श्रेष्ठ तेजस्वी परमात्मा को हम अपने हृदय में स्थापित करें और वो परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। बिल्कुल, शायद सबको, बहुत लोगों को पता होगा। मतलब ये एक ही श्लोक है जो हम लोग अगर निचोड़ इसका निकाले पांच दिन का तो पूरा का पूरा बता देता है कि अगर परमात्मा पे हम विश्वास रखते हैं तो परमात्मा हमको उतनी शक्ति देता है कि हमारी जो बुद्धि है उसको सन्मार्ग पे और हमारे हृदय में उसको परमात्मा को स्थापित करने के बाद हम कोई भी काम करें। मैं एक और एग्जांपल दूंगा। एक लड़का था जो डीएम बन जाता है, कलेक्टर बन जाता है। उसका पिताजी एक मिडिल क्लास, उसको मिलने जाते हैं उसके ऑफिस में। उसके बाद बहुत सारी बातें होती है, ये वो, उसका बेटे को डीएम की चेयर पे बैठे हुए देखते हैं। अब चाय बाय हो गया, उसके बाद पिताजी बोलता है मैं जा रहा हूं। जाते समय वो बेटे को पूछते हैं, मैं एक तुमको क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। उसका बेटा जैसे ये चेयर पे बैठा हुआ है, वो उसके बेटे के पास ऐसे कंधे पे उसके हाथ रख के पूछते हैं, बेटा उसका डीएम की चेयर पे बैठा हुआ है, उसके कंधे पे हाथ रख के उसके पिताजी पूछते हैं उसको कि बेटा मैं बहुत खुश हूं, मैं एक क्वेश्चन तुमको पूछ रहा हूं, तुम्हारे हिसाब से अभी यहां पे इस डिस्ट्रिक्ट में शक्तिशाली कौन है, पावरफुल? बेटा इमीडिएट जवाब देता है, मैं हूं। पिताजी को लगता है मैंने उसको बहुत बार बहुत शिक्षा दी है, अच्छा पढ़ाया, ये वो। फिर से पूछते, बेटा मैं तुमको पूछ रहा हूं कि तुम्हारे हिसाब से यहां पे इस डिस्ट्रिक्ट में शक्तिशाली पावरफुल मैन कौन है? तो बोलता है, नहीं पिताजी मैं हूं। पिताजी, ठीक है बेटा, चल निकलते हैं, दरवाजा खोलते हैं और एक बार पूछते हैं। बोलता है कि बेटा मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, इस रूम में मतलब इस डिस्ट्रिक्ट में अभी शक्तिशाली पावरफुल आदमी कौन है? तो बेटा बोलता है, भगवान है, परमात्मा है, गॉड है। बोलता है, अभी तो तुम थोड़ी देर पहले बोल रहा था मैं हूं। बोलता है कि जब आपने वो क्वेश्चन पहली बार और दूसरी बार पूछा था ना, तब आपका हाथ जो है मेरे कंधे पे था। मतलब एक पिता का हाथ अपने कंधे पे होने से लड़का इतना पावरफुल महसूस कर रहा है। तो हम लोग को तो यहां बार बार बोला गया कि अपना हाथ, परमेश्वर का हाथ जो है वो आपके अगर सर पे है तो आप इस दुनिया के मोस्ट पावरफुल मैन हैं। और अगर आप ठीक से काम करेंगे, अगर आप वैल्यू बेस्ड डिसीजन लेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपका कोई भी डिसीजन रॉन्ग हो सकता है। एक चीज हम लोग कुछ भी कोई भी काम करते हैं तो इतना सिंसियरली या इतनी डिसिप्लिन से भी नहीं करना चाहिए कि सामने कौन है वो। एक मैं और एग्जांपल देता हूं, यहां पे बहुत सारे बैंक के ऑफिसर आए, हम लोग सब बैंक में जाते हैं और अभी तो पोस्ट ऑफिस में जाना कम हो गया है, लेकिन जब हम बैंक में जाते हैं और पोस्ट ऑफिस में जाते हैं, अब पोस्ट ऑफिस का जो क्लर्क होता है या पोस्ट ऑफिस का जो हम लोग पैसा विड्रॉ, इधर पोस्ट में अकाउंट है या स्टैंप लेते हैं या पोस्ट का चेक देके हुए पैसा विड्रॉ करते हैं, वो लोग अब बैंक से रेफरेंस में काफी बहुत ही मिटिकुलसली चेक करते हैं। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि एक पर्सन है, उसका अकाउंट पोस्ट ऑफिस में है, वो चेक, थोड़ा बूढ़ा आदमी है, 80-85 साल का, चेक लेके पोस्ट ऑफिस के काउंटर पे जाता है। पोस्ट ऑफिस के काउंटर पे जब जाता है वो चेक देता है, वो जो काउंटर पे है वो देखता है, वो कंप्यूटर पे देखता है, जनरली चेक देते हैं तो सिग्नेचर देखते हैं, तो चेक वापस कर देता है, बोलता है सिग्नेचर डिफर। अब वो सामने वाला जो आदमी जो खड़ा था 80-85 साल का पर्सन, वो बोलता है, अपना सर तो ऊपर कर, मैं तेरा बाप हूं। मतलब अपने काम में इतना बिजी है। हम लोगों ने कुछ अभी रिसेंट में भी एग्जांपल देखे हैं कि वो जो बैंक में वेरीफाई करने के लिए सिग्नेचर में लोग जाते हैं तो उसको कंधे पे उठा के 20-25 किलोमीटर चल के, या उस तरह के लोग चलते हैं। मतलब इतना भी रूल्स से बाइंडिंग मत हो जाओ कि सामने क्या खड़ा है उसकी उम्र देखो। मतलब उसको तो पिताजी थे, मतलब उसको सिग्नेचर, उसको सामने कौन है पता नहीं है, उसने अगर नाम पढ़ा होता सब कुछ देखा होता, वापस कर दो जाए वापस। मतलब अपना डिसीजन है वो थोड़ा सा केयरफुली लीजिए, सिंपथेटिकली लीजिए। दूसरा एक चीज है कि हमेशा कोई भी शुरुआत करता है नई चीज की, उसी को लोग याद रखते हैं। हमेशा जब कोई एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है या यहां पर भी या कहीं भी आप कोई भी फंक्शन में जाते हैं, कोई जैसे इलेक्शन कमीशन की बात करें तो कौन, मतलब इलेक्शन कमीशन पहले बहुत सारे आए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, लेकिन आज भी हम सब लोग को जो नाम याद रहता है वो है टीएन सेशन का, क्योंकि उसने कुछ ऐसा किया कि एक इलेक्शन सिस्टम पे लोगों का विश्वास बैठ गया। इसके आगे वाला जो सेशन था उसमें हम लोगों को ट्रस्ट के बारे में बता दिया। आज भी दो पड़ोसी में झगड़ा होता है, दो भाई में झगड़ा होता है, तो वो ये नहीं बोलता कि मैं तुमको कलेक्टर ऑफिस में जाके देख लूंगा, मैं तुमको एसपी साहब के पास जाके देख लूंगा, वो तुमको यही बोलता है मैं तुमको कोर्ट में देख लूंगा। हमारा गुजराती में कहिए ना तो के कोर्ट में जो लेस तने, मतलब कोर्ट पे अभी भी लोगों का विश्वास है, ट्रस्ट है। वो ट्रस्ट हम लोग इतने साल के बाद भी एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं बना पाए। लास्ट में मैं एक चीज, यहां पे बहुत सारी भजन भी बोला गया और भजन में एक मैसेज होता है, मैं भजन गुजराती में है लेकिन मैं शायद आप लोग को कम्युनिकेट हो जाएगा क्योंकि ये सेशन कम्युनिकेशन का है और अगर समझ में नहीं आया तो ख्याति दीदी भी नाराज हो जाएगी क्योंकि उसने बोला कि कम्युनिकेशन वेरी मच क्लियर होना चाहिए, जिसमें आपको जब मौका मिलता है तभी वो काम कर देना चाहिए। मैं एक डीएम मोरबी था तो मैं जब मैं पोस्टिंग हुआ उसके 8 दिन बाद वो ब्रिज कॉलेप्स हो गया। आप सोच सकते हैं, आपको अभी ठीक से पता भी नहीं है कौन सा तहसीलदार कौन सा एसडीएम कितना एफिशिएंट है, किस तरह की हेल्प आप लोगों से ले सकते हैं। लेकिन जो शुरू में बताया गया ना, नेशनल मीडिया भी वहां था तो मीडिया के साथ आपका जो कम्युनिकेशन होना चाहिए वो प्रॉपर होना चाहिए, उस तरह का होना चाहिए कि जैसे कि आप उसको इन्फॉर्मेशन दे भी दो लेकिन जो नहीं देना है वो नहीं भी दो। हम लोग के सीनियर्स काफी एडवाइज का बहुत बार किए, आप लोगों को भी किया होगा कि मीडिया को कभी कभी महीने में एक आध बार सामने से मिला के भी कुछ इन्फॉर्मेशन दे दो क्योंकि उन लोगों को भी कुछ चाहिए। जैसे मैडम ने दीदी ने बताया कि प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल मैडम आए थे और मीडिया को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। ऐसा ही होता है, हम लोग जब बोलते हैं कि 12th साइंस का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है और हमारे यहां इस बार 92% स्टूडेंट पास हो गए, उसको मीडिया को इंटरेस्ट नहीं, उसको तो यह कि अगर कोई पेपर लीक हो गया हो अगर कुछ गलत हुआ हो। लेकिन अगर आप रिपीटेडली 3-4 इन्फॉर्मेशन देख, बोला नहीं और एक इन्फॉर्मेशन है, हमारी एक जो MYSY मुख्यमंत्री युवा स्वावलंबन योजना है उसमें हम लोगों ने इस साल 33,000 बहनों को 35 करोड़ रुपया दिया है, तो वो ठीक है वो एक बार लिख लेगा, दूसरे दिन कोई अच्छा न्यूज नहीं मिलेगा तो ये न्यूज भी आ सकता है। मतलब कुछ न्यूज जो है कम्युनिकेट आप सामने से करो मीडिया को, चाहे वो इंटरेस्ट ले ना ले। लास्ट में मैं जो गुजराती भजन बोला था कि आपको जब मौका मिलता है तभी सही काम कर लेना चाहिए, अदरवाइज ऐसा मौका शायद फिर ना मिले। एक पुराना है 16th या 17th सेंचुरी का, गंगा सती और पानबाई का ये भजन है। गंगा सती सास है और उसकी जो, गंगा सती सास है और उसकी पानबाई जो है उसकी बहू है, उसको बोल के वो बोल रही है, विजली ना चमकारे मोतीड़ा परो पानबाई, अचानक अंधारा था शे। मतलब मोती जो गूंथ रही है माला बना रही है उसको जल्दी खत्म करो, बिजली जब होती है लाइट है तभी खत्म कर दो, अदरवाइज एक बार वो बिजली चली गई लाइट। और उसी में आगे में वो भजन में बोला गया है मैं शायद उसको हिंदी में ट्रांसलेट ना कर पाऊं इसलिए अभी सॉरी क्योंकि को प्योर इन गुजराती है, लेकिन कहने की बात यही थी कि ये जो आपको जब मौका मिलता है तब आपको उसी काम कंप्लीट कर देना चाहिए। और एक चीज जो थी मैडम ने बताया साइलेंस, तो कभी कभी जो हमारी कहावतें हैं कि बोले एना बोर वेचाए, पर साथे साथे एक और कहावत भी है कि न बोलवाना नव गुण, मतलब अगर आप साइलेंस भी रहते हो उसमें आपका 9 आपके अच्छे कैरेक्टर्स भी छुपे हुए। थैंक यू।
बहुत बहुत थैंक्स भाई सब का, और भाई सब ने जो मुख्य एक बात बताई, बहुत सारी बातें सुनाई कि हम यहाँ आए हम सभी सम्मानित पद पर हैं, सम्मानीय हैं, आए थे यहाँ पर VIP बन करके, लेकिन हम समझते हैं यहाँ से जाएं भगवान के बच्चे बन करके, ठीक है, भगवान के बच्चे बन करके जाएंगे तो हम पुनः पुनः बार बार इस धरनी पर वापस आएंगे, ऐसा समझेंगे ना। बीके बन के जाएंगे, बीके बने ना बने भगवान के बच्चे हैं और भगवान की छत्र छाया का हाथ सदा मेरे, थोड़ा ऐसा करेंगे सभी, हमारे सिर पर है, ये सदा अनुभव करेंगे। बहुत बहुत थैंक्स परमपिता परमात्मा का, हमारे आज के आदरणीय वक्ताओं का, और आप सभी जिन्होंने इतने धैर्यता से सारे सेशन को अटेंड किया, बहुत बहुत थैंक्स। और इसके पश्चात 6 बजे से हमारा आज समापन सत्र है, वैलेडिक्ट्री सेशन है। आपने बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से सारे सेशन अटेंड किए हैं। आज समझिए कि इन सारे सेशन का निचोड़ आपको समापन सत्र में मिलने वाला है, इसलिए हम पूरी तरह से इस समापन सत्र का पूरा ही आनंद लेंगे। 8 बजे तक चलेगा, 8 से 9 हम भोजन करेंगे, और भोजन के पश्चात हमारे लिए हार्मनी हॉल में, अभी ये बेलेडिक्टरी सेशन इसी हॉल में रहेगा, और इसके पश्चात हम सभी 9 से 10 में हार्मनी हॉल में जाकर के कल्चरल प्रोग्राम का भी लाभ जरूर लेंगे। बहुत बहुत थैंक्स आप सभी का, वक्ताओं का भी बहुत बहुत दिल से थैंक्स। अभी 1 मिनट के लिए हम परमात्मा की याद में बैठ करके फिर निकलेंगे।